ते वासुदेवाय सातवां स्कंद आठवां अध्याय अध्याय का नाम है भगवान नरसिंह द्वारा असुरराज का वध श्लोक संख्या 43 श्री ऋषया उचो त्वं नास्तपा परममाथ यदात्म तेजो येने दमादेम पुरुषात्मगतम ससकर्थ तद वे प्रलोप्त मुण्याद शरण्यपाला रक्षा ग्रहित्वा पुषा पुनरंसमंथा धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य केसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्री ऋषया उचो। ऋषियों ने कहा त्वम तुम ना हमारी तपः तपस्या परमं सर्वोच्च आत्थ उपदेश दिया यद जो आत्मतेज आपकी आध्यात्मिक शक्ति येना जिससे इदं यह भौतिक जगत आदि पुरुष हे आदि परम पुरुषोत्तम भगवान आत्मगतम आपके भीतर लीन ससकर्त आपने उत्पन्न किया तत् तप की वह विधि विप्रलुप्तम चुराई गई अमुना उस दैत्य हिरण्यकश्यपु द्वारा अद्य अब शरण्यपाल शरणागत के परम पालक रक्षा ग्रहित वपुषा आपके शरीर द्वारा जिसे आप रक्षा प्रदान करने के लिए धारण करते हैं पुनः फिर अनुमस्था आपने अनुमोदित किया है। अनुवाद। सारे उपस्थित ऋषियों ने उनके इस प्रकार स्तुति की। हे प्रभु हे शरणागत पालक हे आदि पुरुष आपने हमें पहले जिस तपस्या की विधि का उपदेश दिया है वह आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति है। आप तपस्या से ही भौतिक जगत का सृजन करते हैं। यह तपस्या आप में सुप्त रहती है। इस दैत्य ने अपने कार्यकलापों से इस तपस्या को रोक सा रखा था किंतु अब हम लोगों की रक्षा करने के लिए आप जिस नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं उससे तथा इस असुर को मारने से तपस्या की विधि का फिर से अनुमोदन हुआ है। तात्पर्य सारे जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए आत्म साक्षात्कार का अवसर मनुष्य रूप में पाते हैं और तब धीरे धीरे देवता के नर और चारण के पद को पाते हैं जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। मनुष्य जीवन से ऊपर सभी ऊंचे स्तरों पर मुख्य कर्तव्य तपस्या है। जैसा कि ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धि है। अपने भौतिक जीवन को सुधारने के लिए तपस्या परम आवश्यक है किंतु जब सामान्य लोग असुर के अधीन हो जाते हैं या आसुरी शासन के नियंत्रण में आ जाते हैं तो इस प्रक्रिया को आगे भूल जाते हैं और क्रमशः वे भी आसुरी बन जाते हैं। अतः सारे ऋषि जो सामान्यतः तपस्या में लगे थे नरसिंह देव द्वारा हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर चिंता मुक्त हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान द्वारा मानव जीवन संबंधी मूल उपदेश की कि यह आत्म साक्षात्कार हेतु तपस्या करने के लिए है पुनः पुष्टि की गई है जब उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। ओम अज्ञानस्य तला नरसिंह देव भगवान की। तो आप सबका भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है और प्रसंग ये चल रहा है कि नरसिंह भगवान जी उत्तरित हो चुके हैं खंभा फाड़ के और बहुत ही सुंदरता से उन्होंने हिरण्यकश्यप के सिंहासन पे बैठ गए और फिर हिरण्यकश्यप अपनी गोद में रख के और संध्या के समय उसका पूरा इसे कहते हैं उदर को फाड़ दिया और उसकी आंतों को अपने गले पे लपेट लिया और फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा और हिरण्यकश्यप के जितने पार्षद थे सबको मसल के रख दिया, है ना। तो अभी वो क्रोध शांत नहीं हो रहा और उनको इस देखने के लिए लाइव टेलीकास्ट ने पूरा आसमान में जो सभी देवतागण थे अपने अपने विमानों में, ट्रैफिक जाम हो गया वहाँ पर और सब लोग नीचे भी उतर पाए और जो देवताओं की पत्नियाँ थी ऊपर से फूल बरसा रहे हैं क्योंकि बहुत तंग किया था हिरण्यकश्यप ने। उनके सारे के सारे पतिदेव अपने स्वर्गलोक को छोड़कर नौकर चाकरी कर रहे थे हिरण्यकश्यप के, है ना। तो उसका वध हो गया तो सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, अलग अलग वादे मादन मजा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो ये पूरा जो अध्याय अभी देव स्तुति सभी देवतागण स्तुति कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। तो आप सब भक्तों के आशीर्वाद, विशेषकर वरिष्ठ भक्त मरा प्रभु और अंशीवदन प्रभु सबसे आशीर्वाद मांगते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि पिछले श्लोक में इंद्र जी ने प्रार्थना की थी, उससे पिछले श्लोक में रुद्र जी ने प्रार्थना की थी, उससे पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, आगे हम देखेंगे पितृलोक करेंगे, नाग करेंगे, सिद्ध करेंगे, विद्याधन करेंगे, चरण करेंगे। तो और हम देखेंगे इन प्रार्थनाओं में हर कोई अपनी मानसिकता और अपने साक्षात्कार के हिसाब से कर रहा है। पिछले श्लोक में जब इंद्रदेव जी ने प्रार्थना की थी तो उन्होंने बोला था कि हिरण्यकश्यपु है, इन्हें सारे यज्ञों को बंद करा दिया था और हमें जो यज्ञ का भाग था वो मिलता नहीं था, अब आप आ गए हमें भाग मिलना शुरू हो जाएगा। शिव जी ने प्रार्थना की थी, आप इतना क्रोध दिखा रहे हैं प्रलय आ जाए क्या, नहीं प्रलय नहीं आई, आपके भक्त साथ में खड़े हैं, इनको आप भक्त वत्सल हैं, इनको थोड़ा प्रेम कीजिए। तो हर किसी ने अपने साक्षात्कार और मानसिकता के अनुसार, अब ऋषिगण यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप आ गए हैं, हिरण्यकश्यप ने सारी तपस्या बंद करवा दी थी, अब आप आ गए हैं, अब दोबारा से आप तपस्या के महत्व को स्थापित कर रहे हैं। तो इस ढंग से भगवान से का गुणगान कोई भी भक्त कर सकता है अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपने अपने साक्षात्कार के अनुसार। मुख्यतः हमें यह देखना है कि भगवान ही सभी गुणों के स्रोत हैं। भगवता के 10वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में भगवान कई गुणों का वर्णन करते हैं, बुद्धि, संशय, उसमें तपस्या, तुष्टि, इस सब का कारण भगवान कहते हैं सब गुणों का कारण मैं हूं। और यहां पर ऋषिगण भी कह रहे हैं कि ये जो तपस्या है ये आपकी ही आध्यात्मिक शक्ति है। नमो परमात्म आत्म तेजो यद आत्म तेजो, और इसी तपस्या से आपने ब्रह्मा जी के रूप में अवतार लेकर, गुण अवतार लेकर इस सृष्टि की रचना की। तो आज इस श्लोक के तात्पर्य से, हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से जो मुख्य पॉइंट्स निकालेंगे उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि तपस्या क्या है, तपस्या हमें क्यों करनी चाहिए, और जिस ढंग से नरसिंह भगवान के अवतरित होने से पुनः पुष्टि की गई कि मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है, तो हम कैसा वातावरण क्रिएट बना सकते हैं जिससे हम पूरे समाज में तपस्या के लिए भावना उत्पन्न करेंगे, सब लोगों में तपस्या के लिए उत्साह हो। तो ये तीन मुख्यतः पॉइंट्स हम चर्चा करेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने बहुत से तात्पर्यों में तपस्या के ऊपर चर्चा की है और हम सब जानते हैं कि तपस्या का अर्थ है अपनी स्वेच्छा से कष्टों को स्वीकार करना एक ऊंचे उद्देश्य के लिए, विशेषकर आत्म साक्षात्कार के लिए ना, अपनी उसके लिए। और प्रभुपाद यहाँ पे भागवतम के 5वें स्कंध के 5वें अध्याय का पहला श्लोक, तपो देवेमं पुत्रकम येन सत्वम शुद्धये, प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में बहुत प्रवचन दिए हैं कि तपो दिव्यम, भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि दिव्य तपस्या करो, और कैसे करो, इस तपस्या से क्या होगा, येन सत्वम शुद्धये, आपका जो अस्तित्व है आपका अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। उससे क्या होगा, शुद्धेद अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुम अनंतम, मनुष्य जीवन मिला है सनातन आनंद प्राप्त करने के लिए, हमारी जो भूख है वो छोटे मोटे सुख से संतुष्ट नहीं हो सकती, सनातन शाश्वत आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन शाश्वत आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, इस बीमारी की अवस्था में हम कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसलिए तपस्या से हम अपना आपको शुद्ध करते हैं। जिस ढंग से एक डायबिटीज का मरीज बीमार होता है तो डॉक्टर उसको बोलता है मीठा नहीं खाना, अब उसका फेवरेट डिश हो सकता है रसगुल्ला, लेकिन नहीं खाना तो नहीं खाना, ये रसगुल्ला नहीं साक्षात काल है आपके लिए, मृत्यु है, तो नहीं खाएगा, मरूंगा थोड़ी, खाना थोड़ी है, रोक छाऊंगा किसी ढंग से, तो वो नहीं खाएगा। इसी ढंग से तपस्या, उसके लिए तपस्या है कि जो चाहता है वो नहीं कर रहा एक उद्देश्य के लिए, इसलिए तपस्या का अर्थ है उन चीजों को करना जो हम नहीं करना चाहते, जो हमें पसंद नहीं है, या उन चीजों को त्यागना जो हमें बहुत पसंद है गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये तपस्या है। अर्जुन लड़ाई लड़ना नहीं चाहता था, भगवान ने कहा लड़ो, लड़े, ये तपस्या है, अर्जुन के लिए लड़ना तपस्या थी। अर्जुन के लिए लड़ाई ना लड़ना इंद्र तृप्ति थी। तो ये तपस्या का मुख्य उद्देश्य है। तपस्या कोई कहेगा कि ये तो बड़े कष्ट है, हम नहीं करेंगे। मुख्यतः तपस्या कष्ट नहीं है, बल्कि कष्टों से निवारण करने का एक उपाय है। डरते हैं हम लोग तपस्या से, छोड़ो छोड़ो भैया, हम इतने तपस्वी नहीं है। लेकिन मुख्यतः तपस्या हमें शाश्वत आनंद की तरफ ले जा रहा है ना। आजकल संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है और हर लोग कितना प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाके प्रभुपाद कहते हैं हम लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, कुछ जीवन की अवधि बढ़ा दो। लेकिन हमारे शास्त्र बता रहे हैं कैसे सनातन जीवन पाना है, आप कभी मरेंगे ही नहीं, है ना। लोग कहते हैं जान है जहां है, प्रभुपाद कहते हैं ऐसा जहां है जहां जान ही जान है, जहां मृत्यु है ही नहीं। अब देखिए कितना लॉजिकल है, जान है जी जहान है बस। कितनी तपस्या करते हैं लोग अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, कई लोग बहुत पक्के होते हैं, है ना। हम जाते थे सुबह मॉर्निंग वॉक में, याद है एक बूढ़ा व्यक्ति था 75 से 80 साल का, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो शॉर्ट्स डाल के और घूम तेजी से घूमता था, पक्का नियम का। रोज आएंगे 4:30 बजे रोज, जैसे मंगल आरती रोज। पक्का नियमों का, शरीर शरीर जान है जहान है, सही बात है जान है जहान है। लेकिन जान तो चली जाएगी, जितनी मर्जी आप तपस्या कर लो इसको आप रोक नहीं सकते, मृत्यु वो आएगी आएगी। लेकिन ऐसी तपस्या करें जिसमें जान ही जान रहे। आप सोचिए आत्मा कितनी सुंदर है, आत्मा हमेशा नवयौवन है, आत्मा को कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सच्चित आनंद, ऐसा जीवन है। कोई ऐसा नहीं ड्रीम सेलर आपको सपने दिखा रहा है, कोई व्यक्ति ऐसे बुद्धू बना के चला गया पैसे लेके, ऐसा जीवन है। थोड़ी सी तपस्या बस, और ये मनुष्य जीवन में ही संभव है, मनुष्य जीवन में ही संभव है। तो इसलिए तपस्या कोई कष्ट नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक तापों से निवारण के लिए तपस्या है। वैसे नहीं करेंगे तो ये वैसे ही भौतिक जगत त्रिताप तपस्या कराएगा आपसे, त्रिताप है, तपाएगा ही तपाएगा आपको। ये नहीं कि हम तपस्या करें बड़े कंफर्टेबल हो गए, तपना तो है ही है, क्यों ना वॉलंटरी कर लें, हाँ भी ये करूंगा और इससे मुझे शाश्वत जीवन मिलेगा। फिर भी इतना जाने के बाद भी हम लोग तपस्या करें उत्साहित नहीं रहते और मौका ढूंढते हैं, हमारे मन कई आइडिया देता है कि कहां तपस्या को थोड़ा सा कंफर्टेबल बना दिया जाए, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम समझ नहीं रहे हैं कि भौतिक जगत कितना खतरनाक है और आध्यात्मिक जगत कितना सुंदर है, इस बात को हम जान नहीं पाते। कृष्ण परम आकर्षक है, कृष्ण में ऐसी शक्ति है जो हर जीव को अपने प्रति आकर्षित करते हैं, और कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया में भी वैसे ही शक्ति है, वो भी हम सबको आकर्षित करती है। और हम तटस्था प्रकृति हैं, हमारे पास ये स्वेच्छा है कृष्ण से आकर्षित होना है कि माया देवी से आकर्षित होना है। आकर्षित तो हमें होना ही होना, बिना आकर्षण के हम रह नहीं सकते। लेकिन अंतर क्या है, कृष्ण का जो आकर्षण है, कृष्ण का जो प्रेम है वो वास्तविक है, और जो माया हमें झूठी पिक्चर दिखा रही है वो केवल भ्रम है। तो इसको समझना, और प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भ्रम कैसा है, मृग तृष्णा की तरह, है ना, है दिखता है लेकिन है नहीं, और हम इसके पीछे भागते रहते हैं भागते रहते हैं भागते रहते हैं। आप में से किसी को अनुभव है रेगिस्तान में नंगे पैर धूप में भागने की, हमसे किसी का अनुभव नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं सुनते हैं, हमें मालूम नहीं है कितना खतरनाक है, हमें कभी ऐसा सपना भी नहीं आया होगा, है ना, कुछ वीडियोज में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। तो परम पूजनीय राधाना स्वामी महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं जर्नी होम में, जब वो इस्तांबुल से दिल्ली आए थे तो उसका 80% यात्रा में केवल रेगिस्तान था। तो अपने एक लेक्चर में वर्णन करें क्या एक्सपीरियंस होता है, ये समझाने के लिए मृग तृष्णा क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे हमारा यहां से निकलने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, है ना। तो मृग तृष्णा क्या है वो बता रहे हैं कि पूरा रेगिस्तान है और आप नंगे पैर चल रहे हैं, सर के ऊपर सूर्य है, जय श्री श्री राधा राधिका रमन श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री श्री गौर निधाय, सर के ऊपर सूर्य है, इतनी गर्मी है, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, और आपका शरीर का एक एक अणु एक एक अंग रो रो के चिल्ला चिल्ला के आपसे पानी मांग रहा है, और कुछ आसपास दिखाई नहीं दे रहा, आप सोचिए उस कल्पना कीजिए, और आपके मन केवल पानी चाहिए, बस केवल पानी, पूरा शरीर सूखा हुआ है गर्मी से और नीचे रेत रंगे पांव आप चल रहे, केवल पानी चाहिए। जब मन को केवल एक ही चीज चाहिए तो उसको हर जगह वही चीज दिखाई देती है, और फिर माया की शक्ति से क्या लगता है कि सामने बिल्कुल इतना सुंदर एक बहुत ही पौंड है, एक तालाब है, बहुत सुंदर साफ जल, और व्यक्ति उसके पीछे भागता है। और देखिए क्या किस ढंग से भगवान ने रचना की, जितना वो भागता है उतना वो दूर होता जाता है ना, और इस व्यक्ति को नहीं लग रहा कि वो दूर हो रहा है, उसका लगता है बस यही पास में, अभी पकड़ा। जैसे कृष्ण लीला में आता है काल्यावन, है ना, भगवान के पीछे इतनी जोर से भाग रहा है और भगवान मारे आराम से चल रहे हैं, और काल्यावन को ये बस अभी पकड़ लिया, ये अभी पकड़ा, और कृष्ण आराम से चल रहे हैं और काल्यावन बहुत तेजी से भाग रहा है। इसी ढंग से भगवान यही शक्ति अपनी माया के द्वारा प्रकट करते हैं, हमें लगता है बस ये पानी है और व्यक्ति भाग रहा है, और उसको नहीं लग रहा कि ये दूर हो रहा है, उसको लग रहा है बस पास में ही है, लेकिन वो दूर होता जा रहा है। और हो क्या रहा है, जितना वो भाग रहा है उसकी प्यास कम होगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। अब देखिए वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे वो इतना पागल हो जाता है, उसको लगता है कि मैं पानी पीना शुरू कर दिया, और पानी पीना शुरू कर देता है, और पानी की जगह वो क्या खा रहा होता है, वो गर्म रेत खा रहा होता है, इसको समझ के पानी समझ के, और गर्म गर्म रेत खाने से क्या होता है, उसकी प्यास बुझेगी कि बढ़ेगी, और बढ़ेगी, और बेचारा इतनी दर्दनाक स्थिति में होता है कि वहीं प्राण त्याग देता है, और अगले जीवन में फिर शुरू, पुनरपि जवनम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, और ये फिर शुरू, ये मृत्युष्णा फिर शुरू, ये रेस कर रहे हैं। हम लोग भी इसी ढंग से जब कृष्ण से मुमुख होते हैं, हमारा हृदय बिल्कुल खाली है, सूखा है, और हम उस सूखेपन को, उस प्यास को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी तरह तरह के इंद्रिय तृप्ति के जो विषय वस्तु हैं, अच्छा रूप देखना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छे किसी चीज को छूना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा सूंघना चाहते हैं, हम सब जो हमारी प्यास है कृष्ण प्रेम की, उसे इससे भरना चाहते हैं, जैसे वो व्यक्ति रेत को खा रहा था पानी समझ के, है ना, और उसको यही लग रहा है एक सुंदर स्त्री का संग, सुंदर पुरुष का संग, अपनी तारीफ सुन के, अच्छा खा के, मुझे वो मिल जाएगा जो मेरे हृदय में कमी है, बिल्कुल वही पास नहीं है। वो दिखाता है सुंदर सुंदर रूप, सुंदर सुंदर म्यूजिक, और सुंदर सुंदर आपके आहार, लगता बस ये मिल गया तो सब सुखी, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया फोन, सब कुछ, समाज में पूजा, लाभ प्रतिष्ठा, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, और व्यक्ति भागता है इसके पीछे, और उसको पाता है, लेकिन फिर और उसकी प्यास बढ़ती है। तो ये हमारा जीवन है, तो इसको समझना पड़ेगा हमें, ये जो मृत्युष्णा आश्रम में जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो उसको समझता नहीं है, उसको लगता नहीं मैं गलती कर रहा हूं कोई। एक बार जब हम शुरू शुरू में जुड़े थे तो गीता मैराथन के लिए अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति के पास गए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, यंग व्यक्ति था, दोपहर का समय था, और मैं गया तो व्यक्ति मदिरा पान कर रहा था, बियर पी रहा था, तो मैं गया तो मुझे ऑफर करने लगा, मैं कहने अच्छा चलो चाय लाओ, मैं चाय भी चले यार थम्सअप पी, थम्सअप भी पी, क्या यार कुछ नहीं खाते पीते, व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ, मैं बोला यस व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ, वो समझ नहीं सकते, अरे क्या है कुछ भी खाता पीता नहीं, क्या है इस। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो सोचते हैं कि हम कितने बेचारे व्यक्ति हैं, हम लोग कुछ भी भोग नहीं कर रहे और ये कितना भोग कर रहे हैं, लेकिन वो मृग तृष्णा उसके पीछे वो भाग रहा है, उसको लग रहा है कि अपने हृदय के सूनेपन को, खालीपन को इससे वो दूर कर लेगा। ये तो भौतिकवादी व्यक्ति है, वो तो भ्रम में है, उसको लगता है कि मुझे एक दिन सफलता मिल जाएगी, वो खुशी मिल जाएगी। लेकिन हम लोग जो नए नए भक्ति में जुड़ते हैं, ना इधर के ना उधर के, और हम लोग कनिष्ठ अधिकारी हैं, हम मालूम है हाँ हाँ सुना था लेक्चर में, हाँ हाँ ये है मृत्युष्णा ही है, लेकिन हमारी ये हालत होती है ना तो इसके साथ जी सकते ना इसके बिना जी सकते, चाहिए दू नहीं 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 ये बहुत कष्ट देगी, लेकिन बिना इसके जीवन ही वहां चाहिए भी नहीं भी चाहिए, ये हमारा जीवन है कि नहीं ऐसा, बार बार आकर्षित हो जाते हैं, फिर पछताते हैं, फिर नहीं होगा, तो हम इसी हमारा संघर्ष चलता रहता है, ये हमारा एक अनर्थ है। तो कैसे हम इससे छुटकारा पाएं, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए भक्ति में अपने आप को इस माया के ये जो भ्रमित करने वाली जो शक्तियां हैं, जो माया के भ्रमित करने वाले ये जो वायदे हैं, इससे अपने आप को दूर रखना, और अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, और ये है तपस्या। जब तक ऐसा नहीं करेंगे हम इस मृग तृष्णा के चंगुल से नहीं निकल पाएंगे और सनातन जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या एक पहला सिद्धांत है, बिना तपस्या के हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा संभव नहीं है कि अपनी मनमानी भी करते रहें और भक्ति भी चलती रहे, ऐसा संभव नहीं है।
प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कराते हैं, खूब भंडारे करते हैं और कोई नियम नहीं है, आइए जो मर्जी खाना पीना बस बढ़िया, कोई समस्या नहीं है, भगवान के भक्त ठाकुर जी हैं, बस राधे राधे हो रहा है, बहुत बढ़िया है ना। और वहां पे जब कोई ऐसा भक्त आता है, एक नया सा भक्त बैठा हुआ, 20 साल का लड़का बैठा हुआ और बोला चाय नहीं पीनी, पान नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो एक बेचारा 60-70 साल का व्यक्ति, इसने पूरा जीवन ऐसे सत्संगों में तथा सत्संग कार्यों में लगा दिया और सुन के ऐसे एक युवा व्यक्ति से ऐसे सुनता है तो उसको बहुत ठेस पहुंचती है, ये पूरा जीवन मैंने क्या किया, भक्ति नहीं की क्या, बहुत भक्ति की, और ये नया लड़का मुझे सिखा रहा है क्या भक्ति। हम सबके घरों में भी यही तो होता था कल फिर, अरे तू पहला भक्त आया ऐसा, हमारे सत्संग में चाय प्रसाद मिलती है तुम्हारे चाय में, ये तो क्या है, चाय चाय से भक्तियां क्या लेना देना, सारे साधु पीते हैं चाय, भैया आओ भाई साधु बनाइए चाय पीजिए, सब बिस्किट चाय खाते हैं सब बढ़िया, क्या दिक्कत क्या है, लोग समझ नहीं पाते। और इसलिए जब ऐसी बातें बड़ी कठोर लगती हैं सुनने में, लेकिन बिना इसके हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते, और यही सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेका पुरुष पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा दये हम तमाम प्रपद्ये। सार्वभौम भट्टाचार्य बता रहे तीन चीजें सिखाने हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। वैराग्य का अर्थ है माया को ना कहना, जितने भी प्रलोभन है ना, इच्छा हो रही है सुंदर स्त्री को देखने के लिए ना, इच्छा हो रही है बहुत कुछ इंद्र तृप्ति करने के लिए ना, इच्छा हो रही है पजल्पा करने के लिए ना, इच्छा हो रही है खूब पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिले ना, तरह तरह के प्रलोभन, ये वैराग्य है। ऐसा नहीं है कि ये सारी इच्छाएं पूरी भी करता रहूं और कृष्ण प्रेम भी पालूं, असंभव। माया के साथ भी खलूं और फिर शायद शाश्वत जीवन पाऊं, असंभव। तो ये वैराग्य अति आवश्यक है, ना नहीं करना। माया के सारे प्रलोभन है, याद करें उन रेगिस्तान को, ये सारा प्रलोभन है, दिखाई देता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। विद्या, विद्या से ये सीखना कि क्या मुझे सुख देगा, क्या मुझे दुख देगा। ये जो इंद्र तृप्ति है, ये वास्तव में हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। अपनी कुंठा को व्यक्त करने का तरीका है इंद्र तृप्ति, और जब व्यक्ति अपनी कुंठा को व्यक्त करता है तो खुश नहीं होता, उसकी कुंठा और बढ़ती है। और आजकल के इस संसार में फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप में क्या हो रहा है, हर कोई अपने इंद्र तृप्ति के अनुभव शेयर कर रहा है, उसको लगता है मैं अपनी सफलता शेयर कर रहा हूं, वास्तव में अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहा है और सब एक दूसरे की फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। ये आज का वातावरण है, हमने नहीं फंसना इसमें, ये समझना पड़ेगा। ये विद्या, प्रभुपाद के ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ना, प्रभुपाद के उपदेशों को प्रतिदिन सुनना, जिससे हम जान पाए क्या वास्तव में सुख देता है, क्या वास्तव में दुख देता है। ये दिखाता है मैं सुख दूंगा लेकिन है दुख, ये मृत कृष्णा, बहुत भगवान की बहुत जबरदस्त ये भ्रमित करने वाली शक्ति है ये विद्या। और फिर भक्ति, भक्ति से हमें ऊंचा टेस्ट मिलेगा, हायर टेस्ट, भगवान की नवदा भक्ति करना, श्रवण से प्रारंभ हुए, श्रवण कीर्तन इत्यादि। जब तक वैराग्य का पालन नहीं करेंगे तब तक भक्ति में हायर टेस्ट नहीं मिलेगा। भक्ति करनी है सही सेवा की भावना से, सही सर्विस एटीट्यूड से। अगर हम वैराग्य का पालन नहीं कर रहे और भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि भक्ति में उन्नति का अर्थ है ज्यादा प्रसिद्ध होना, भक्ति में उन्नति का अर्थ है कितना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है, भक्ति में उन्नति का अर्थ है कि लोग मेरे में क्या कह रहे हैं, भैया बहुत अच्छे भक्त हैं, मैं उन्नति कर रहा हूं। क्यों? वैराग्य का पालन नहीं किया। वैराग्य का पालन करेंगे तब मालूम है कि भक्ति में उन्नति का अर्थ है सही सेवा की भावना को विकसित करना। भक्ति में उन्नति का अर्थ है कि मैं हमेशा सेवा करता रहूं बिना किसी आशा के, कि कुछ नहीं चाहिए, ना ही पद चाहिए, ना कोई प्रशंसा चाहिए, कुछ नहीं। ये वास्तव में अगर ये इतना इस तरह की भावना हृदय में उत्पन्न नहीं हो रही, इसका हम उन्नति नहीं कर रहे। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। हमें प्रतिदिन बोलते तो हैं, लेकिन हमें बोलते ये प्रार्थना करनी चाहिए कि किस दिन मैं इसको हृदय से बोलूंगा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, इसका मैं वास्तव में ये मेरे हृदय से प्रार्थना हो निकले कि हाँ ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये उन्नति होगी। और ये उन्नति कब होगी? जब हम वैराग्य का पालन करेंगे। और वैराग्य हम अपने जीवन में तब ला पाएंगे जब प्रभुपाद बोलते हैं हम तपस्या में प्रशिक्षित होंगे। तपस्या में प्रशिक्षित नहीं होंगे तो वैराग्य अपने जीवन में ला ही नहीं सकते। और जब वैराग्य जीवन में ला ही नहीं सकते, कुछ भी विद्या अंदर प्रवेश नहीं करेगी। और जब तक विद्या अंदर प्रवेश नहीं करेगी, हमें भक्ति में सही हम सेवा की भावना से सेवा कर ही नहीं पाएंगे। आप समझ रहे? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का सही ढंग से हम जप कर सकें, इसके लिए चार नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। ये चार नियमों का पालन करने की तपस्या से हमारा हरे कृष्ण महामंत्र की जो चैंटिंग है वो इफेक्टिव प्रभावशाली हो जाती है। अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी प्रभावशाली नहीं होगा। और हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हमें इतनी शक्ति मिलती है कि चार नियमों को हम अच्छे ढंग से पालन कर सकें। चार नियमों को अच्छे ढंग से पालन करने से हमें यह शक्ति मिलती है कि हमारा जप और प्रभावशाली होता है। दोनों संबंधित हैं आपस में। तो वैराग्य, विद्या, भक्ति, ये तीनों जुड़े हुए हैं। इसको हम एक को करें दूसरे को ना करें ये संभव नहीं है। इसलिए तपस्या का पालन अति आवश्यक है। देखिए, जिसको व्यक्ति को जो चाहिए उसके लिए तपस्या करेगा ही करेगा, है ना। एक युवती है जो कि मिस इंडिया बनना चाहती है, वो कितना ध्यान रखेगी अपने शरीर का, बिल्कुल नहीं खाना, कोई पेस्ट्री नहीं, कोई केक नहीं, कोई आइसक्रीम नहीं, कुछ नहीं, स्लिम एंड ट्रिम रहना बिल्कुल। और उसके साथ ये दूसरी लड़कियां हो सकती खूब खाएंगी पिएंगी उसको चढ़ा के, देखा हमें नहीं बनना भैया मिस इंडिया, हम जैसे हैं वैसे थोड़े मोटे हो गए, क्या हो गया, है ना। तो एक बहुत ही विशेष देखा जाए तो वो बेचारी कितनी कष्ट भोग रही है और उसके साथ ये सब उसके फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं। याद है पहले कपिल देव क्रिकेटर, नाम सुना होगा आपने, उसने बोला था कि मैंने एक आउट स्विंगर कैसे फेंकनी है, रोज 3 से 4 घंटे गर्मी में बॉल फेंकता रहता था। बस आप सोचो, कोई आसपास व्यक्ति नहीं है, नेट पे खड़े होकर जा रहा है बॉल फेंक, नेट पे खड़े जा रहा है बॉल फेंक, 4 घंटे यही कर रहा है। तब जाके वो सीखा आउट स्विंगर कैसे होती है। जिसके लिए चाहिए व्यक्ति तपस्या करेगा, चाहिए तो करेंगे। तो इसी ढंग से किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना, कितनी तपस्या, पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसके लिए एडमिशन होता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को अच्छे स्कूल में लेने के लिए तपस्या होती है ना, प्रिपरेटरी स्कूल में नहीं, वो संडे को उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है। जोक नहीं है, प्रिपरेटरी स्कूल में भी जाते हैं, संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस होती है कि अगले मंडे को उसका बड़े स्कूल में कोई इंटरव्यू है, उसकी तैयारी, तपस्या। तो जो चाहिए उसके लिए पेरेंट्स भी तपस्या करते हैं, बच्चे भी तपस्या करते हैं। तो हमें चाहिए, अगर शाश्वत आनंद चाहिए तो तपस्या, और ये तपस्या बाद में बहुत आनंददायक हो जाती है। एक भौतिक तपस्या और एक दिव्य तपस्या में यह अंतर है कि भौतिक तपस्या के अंत में भी फ्रस्ट्रेशन है। हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की, उसके पूरे शरीर को चींटियों ने खा लिया। हमारे में एक मच्छर भी चलता है तो हमें कितना दुख कष्ट होता है, हमें एक चींटी भी चढ़ी कितने खुजली होती है, हम देखते हैं कौन सी चींटी खुज गई अंदर, उसके पूरे शरीर को खा लिया। अब सोचिए कितनी तपस्या, लेकिन परिणाम क्या, कुंठा, खोदा पहाड़, निकली चुहिया। ये भौतिक जीवन की तपस्या है। लेकिन जो दिव्य तपस्या है, थोड़ा सा क्या करने पर बात बोलते हैं, थोड़ा सा बस चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, चार नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो, ध्यान करो, थोड़ी सी तपस्या पर कितना रिजल्ट, कितना बढ़िया शाश्वत जीवन कृष्ण का संग हमें प्राप्त हो। आप सोचिए, ये जो कलयुग है बहुत ही विशेष युग है। हमें ध्रुव महाराज की तरह तपस्या नहीं करनी, जंगलों में नहीं जाना, गुफाओं में नहीं घुसना, क्या करना है, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस क्या है इसमें, चैतन्य महाप्रभु की इतनी असीम कृपा, पर से प्रभुपाद जी ने और इसको आसान बना दिया, 64 माला से 16 माला कर दिया सीधा। लेकिन हमें ये तपस्या बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भागवतम के 5वें स्कंद में, अगर प्रतिदिन कोई ध्यान पूर्वक अपराधों से बचते हुए 16 माला का जप नहीं कर रहा, वो किसी भी समय माया के चुंगल में जा सकता है। एवरी डे ध्यान पूर्वक अपराधों से बचते हुए हमें 16 माला का जप करना चाहिए, अन्यथा किसी भी क्षण वो माया के चुंगल में गिर जाएगा। ये माया इतनी खतरनाक है, ये माया को हम समझ में नहीं सकते, इसकी क्या शक्ति है, भगवान की शक्ति है ये दिव्य। देवी ऐशा गुणमयी मम माया प्रपद्य। तो इसलिए, लेकिन आज के कलयुग में नाचना गाना और फिस्टिंग करना ये भी तपस्या है, करते नहीं। एक कलयुग में इतना क्लेश, इतनी लड़ाइयां, बात बात में भक्तों के आपस में भी इतने मन मुटाव हो जाते हैं, नाचने का ही मन नहीं करता। आप सोचो, नाचने की सुविधा, नाचने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। एक बाहर के व्यक्ति से पूछो, भैया कब नाचे थे आप? वो, मेरे बेटे का विवाह हुआ था तब दारू वारू पी के थोड़ा सा नाचा था, बस। कभी नाचता है व्यक्ति? कभी नहीं नाच सकता, उसको नाचना भी नहीं आता बेचारे को। और कोई नाच रहा बोला, किसकी शादी है जो नाच रहा है? वो ये बोलेगा, ये हम लोग रोज नाचने का अवसर हमें मिल रहा है, कितने अवसर मिल रहे हैं, नाचो नाचो। और जितना हम नाचने की प्रैक्टिस करेंगे, वैकुंठ जब भगवान के धाम जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, यथागान क्या है, नात्यम गमन अपि, वहां चलना भी नाचने के समान है, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हमें ये मन नहीं करता, नहीं नहीं नाचूंगा, पता नहीं क्या क्या मन में चल रहा होता है ना, प्रसाद उस पर भी आनंद नहीं है, शुरू में लगता है, बाद में रूटीन हो जाता, क्या है वही प्रसाद है, चैंटिंग सोते सोते, यही तपस्या हमें लगता है, यही करना तपस्या लगती है। तो फिर हम क्या ध्रुव महाराज और क्या ऋषिगणों की तपस्या करेंगे, सोचिए। लेकिन अवस्थी तपस्या क्या है, कि जीवन की जैसे मर्जी परिस्थिति हो, संसार में जो मर्जी हो रहा हो, मुझे स्टैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग के लिए बहुत उत्साहित रहना है, मन की बात को नहीं सुनना, इस तपस्या है। मन की तपस्या में भगवान गीता में क्या बताते हैं, मना प्रसादा सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्ध तपो मानस मुच्यते, संतोष सरलता गंभीरता आत्मसंयम जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। संतुष्ट रहिए, जिस स्थिति में है जैसे हैं संतुष्ट। मन को समझाना पड़ेगा, मन तो हमेशा हर चीज में, मोहिजुल्लन सचिन स्वामी महाराज आए थे ना, फॉर्मूला ऑफ 99, एक चीज कमी है तो जो 99 है वो नहीं दिखाएगा, एक जो कमी है वो ही दिखाता रहेगा। तो मन तो असंतुष्टता के कारण ढूंढता है, डिप्रेस होने के कारण ढूंढता है, उसको समझाना पड़ेगा, चुप, संतोष जितना है संतोष है। सरलता, क्यों किन चक्रों में फंसे रहे हो, सादा जीवन बिताने का प्रयास करें, गंभीर रहें, अपने लक्ष्य पे फोकस रहे, आत्मसंयम इंद्रियों को उधर ना भटकने दे, और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो तपस्या का अर्थ है हमेशा हम उत्साहित रहें भगवान के नामों का जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, श्रवण करने के लिए, चाहे हमारे शरीर में कष्ट चल रहे हों, चाहे मन में कष्ट चल रहे हों, ये संकीर्तन आंदोलन है। हर स्थिति में हम जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। मुझे हो सकता है दूसरे वक्त मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, कोई मेरी निंदा कर रहा है, कोई झूठे आरोप लगा रहा है, जैसे मर्जी परिस्थितियां हैं, मुझे उत्साहित रहना, ये मेरी तपस्या है और ये भक्ति का पहला सिद्धांत है। इसके बिना कोई वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, बिना इसके वैराग्य कोई विद्या प्रवेश नहीं करेगी, कोई साक्षात्कार नहीं होगा, कोई हायर टेस्ट नहीं आएगा। शिला प्रभुपाद जी जब गए थे टॉम्सकिन स्क्वेयर पार्क में कीर्तन करने के लिए, उस दृश्य की कल्पना कीजिए। हम लोग यहां पर जब कीर्तन करते हैं, बढ़िया साउंड सिस्टम होता है, चार पांच लोग मृदंग बजाने वाले होते हैं, बम्पर बजाने वाले करताल, आसपास भीड़ होती है नाचने वालों की, तब जाके हमें उत्साह आता है कीर्तन करने का। वहां टॉम्सन स्क्वायर पार्क में दृश्य को देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला डुगडुगी ले गए थे, ना कोई ड्रम था, ना कोई करताल था, ना कुछ, डुगडुगी है ना, वो मदारी कहते ना डुगडुगी, वो थी बस, अकेले बैठे हैं एक बिल्कुल अजीब सी जगह पे, और उल्टे सीधे लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां पे, उसके पीछे बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। क्या क्या तपस्या होगी। एक ब्रजवासी हमारे ऐसा व्यक्ति नहीं थे, नया नया हरे कृष्ण महामंत्र सुना, बड़ा उसको उत्साह था, चलो कुछ ट्राई करो। एक ब्रजवासी राधा दामोदर में तपस्या करने वाले, क्या क्या ग्रंथ में लिखे, क्या प्रभुपाद का स्तर है और क्या प्रभुपाद को करना पड़ रहा है, आप सोचिए। ये कीर्तन, हम कीर्तन करते हैं अपनी खुशी के लिए नहीं, जब तक उत्साह नाचते रहे थक गए चल छोड़ो, नहीं। इंदुन स्वामी महाराज आते हैं पोलैंड में बीचेस के ऊपर कीर्तन करने के लिए, धूप हो जाती है, रेत गर्म हो जाती है, तभी वो उसी उत्साह से कीर्तन करते रहते हैं। ये तपस्या है। यज्ञ का अर्थ है सेक्रीफाइस, और उस सेक्रीफाइस करने में जो पीड़ा उत्पन्न सहन पड़ रही है वो तपस्या है, और इसी से ज्ञान प्रकट होगा। जहां तक कंफर्टेबल है वहां तक कीर्तन किया, उसके बाद नहीं, कोई ज्ञान प्रकट नहीं होगा। ठीक है, कुछ सुकृतियां मिलेंगे, कुछ शुद्धिकरण होगा धीमी गति से, लेकिन सेक्रीफाइस, यज्ञ का मतलब है बलिदान, कुछ बलिदान करना। फीस्टिंग प्रभुपाद खुद बनाते थे, भोग भगवान को अर्पण करना, हिप्पियों को खिलाना, उनके बर्तन धोना, सफाई करना, तपस्या। डांसिंग, 70 साल की आयु में प्रभुपाद नाच रहे हैं। हम लोग चाहे जैसे भी हो, हमें हमारे उत्साह को देखकर दूसरे का उत्साह बढ़ेगा। हम अगर ढीले खड़े हैं सब दूसरे भी घुले चले, मैं भी थका हुआ हूं, मैं भी थका हुआ हूं। परेशानियां कम है किसी के पास? परेशानियों के बोले आप लिस्ट बनाइए, कितनी परेशानियां हमारे पास। उन सबको बोल के हमें उत्साह पूर्वक कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के दिव्य नाम का, भगवान के दिव्य वाणी का प्रचार करना चाहिए। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, चलो ठीक है, अब 4 नियम बड़ी आसानी से पालन हो जाते हैं, घर में भी भोग लगता है, सारा वातावरण बहुत अच्छा है, 16 माला भी सुबह सुबह हो जाती है, तो कंफर्ट जोन में रहने से कोई साक्षात्कार नहीं होने वाला है ना। माया इतनी प्रबल है, माया हमें यहाँ बिठा देगी अपनी गोद में, है ना। माया भी हमारे तरफ देखकर हंस रही है, हम भी देखकर हंस रहे हैं, है ना। कितना प्रेम है आपस में, माया की गोद में जीव लेटा हुआ एक दूसरे देख हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया। 16 माला 4 नियम, 16 माला 4 नियम बोला रोज हो रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे भक्त हो, सब अच्छे चल रहे हैं ना। और आसपास समाज में अगर कोई चाय नहीं पीता, उधर भगत जी हैं, जी भगत जी हैं, है ना, थोड़ा तिलक लगा लिया, भगत जी हैं, जी भगत जी, तो आसपास अच्छी रेपुटेशन है, बढ़िया फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, सेटल हो गए भक्ति में, फर्स्ट क्लास चल रहा है, ऐसे माया और बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन चल रहा है। लेकिन तभी गुरु आते हैं, जीव जागो सुनते हैं तो बोलता है कुछ तो करना चाहिए, कब तक चाहिए। जब वो जागना शुरू करता है तो ये सुंदर दिखने वाली जो माया है पूतना जैसी दिखाई देती है, खपतदार जो यहां से निकला, फिर वो नहीं निकलने देती है बिल्कुल, और फिर तरह तरह के पदम पदम यात्री पदम, मेरे को छोड़ के जाने वाला है, कैसे जाते देख, है ना। जैसे जेल में आप अभी गए होंगे प्रचार के लिए तो जेल में आप जाते हैं तो जेल में एक सिक्योरिटी सिस्टम है कि कोई कैदी भाग के ना जाए, वहां पे तरह तरह के हॉर्न लगे होंगे, वायर्स लगी हुई हैं, कुछ लोग घूम रहे होते हैं, तो जो व्यक्ति कैदी है वो देखता होगा यार ये ऐसे ही है, इसका कोई यूज तो होता नहीं, इतना खर्चा गवर्नमेंट ने कर रखा है, और ये गार्ड भी सोते रहते हैं, मैंने तो कभी हॉर्न बजते देखा ही नहीं, पता नहीं खराब हो गया होगा, ये तो ऐसे ही बेकार का है ना। उसको ऐसा लगता है कि ये सिक्योरिटी चेक कुछ भी नहीं है, तो उसके मन में आइडिया चला जाऊंगा, किसी दिन ऐसे चला जाता हूँ ना, निकल जाऊंगा, कोई भी नहीं करते यहाँ, काम भी नहीं करता, ये तो ऐसे लगा हुआ है, पता नहीं कब का लगा हुआ है, कभी देखा ही नहीं फंक्शन करते हुए। लेकिन जैसे ही वो भागने का प्रयास करता है, चारों तरफ हॉर्न बजने शुरू हो जाते हैं, ड्यों ड्यों ड्यों, और सब उसके पीछे पड़ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, सारे कैमरा ऑन, लाइट्स ऑन, सब कुछ। इसी ढंग से जब तक हमारे कंफर्ट जोन में है ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम माया से युद्ध करना शुरू करते हैं, पदम पदम यत विपदम, तो हम अपने जीवन में कितना संघर्ष कर रहे हैं भक्ति में, इसका मतलब है हम प्रगति कर रहे हैं, है ना। संघर्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं है, और संघर्ष हर स्तर सूक्ष्म स्थूल लेवल पे होता है, 4 नियमों के पालन में संघर्ष होता है, धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाता है। 4 नियम तो पालन हो गए, आप पंडित जी बन गए, बढ़िया, लेकिन 4 नियमों के पालन से भगवद्धाम नहीं जाएंगे। सही सेवा की भावना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, यही जो काम है अब पूजा लाभ प्रतिष्ठा के रूप में आएगा, मुझे चाहिए, मुझे पद चाहिए, ये चाहिए, उसको रजिस्टर करना, और फिर उसके बाद और ये सूक्ष्म हो जाएगा। फिर संघर्ष बना रहेगा अगर हम वास्तव में तैनात हैं, अलर्ट हैं, लेकिन हम सोए हुए हैं तो हमें लग रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। जितना ध्यानपूर्वक हम जप करने का प्रयास करेंगे उतना हमें लगेगा कि हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, और जितना हम लापरवाही से जप करेंगे हमें लगेगा बहुत बढ़िया जप चल रहा है। ये पता नहीं क्यों संघर्ष करते रहते हैं, कहते हैं जब मैं संघर्ष, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं। शुरू शुरू में जब मैं जुड़ा तो सब भक्तों को देखा नींद आ रही है, मैंने क्यों सोते हैं यार, जब में भी कोई सोता है, मुझे तो कभी नींद नहीं आई अभी तक, बढ़िया चल रहा है जब, बहुत अच्छा हो रहा है, कितना बहुत अच्छा लग रहा है जब, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जब सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब भक्तों से आदान प्रदान शुरू होता है, अपराध होने शुरू होते हैं, तब संघर्ष शुरू होता है। तो जब तक कोई सेवा की जिम्मेवारी नहीं लेंगे, उसको पूरी बीमारी से नहीं निभाएंगे, और उसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमें हमारी क्या असली स्थिति है उससे हम अवगत नहीं होंगे। हम झूठी दुनिया में होंगे, हाँ जी हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, ये पता नहीं क्यों ऐसे उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। मेरे साथ तो ऐसा अनुभव हुआ नहीं है ना, आप में से कहीं लोगों को लग रहा होगा जो नहीं है कैसी ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे साथ तो अनुभव हुआ नहीं। हाँ इसका मतलब है कोई जिम्मेवारी नहीं ली अभी, जब जिम्मेवारी लेंगे तब ये सारी चीजें प्रकट होनी शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए तपस्या हमें हमेशा ही करते रहना चाहिए और हर स्थिति में वैष्णव सदाचार का पालन, हर स्थिति में उत्साहित रहना, हर स्थिति में ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करना, ये हमारे लिए तपस्या है। और इस संकीर्तन आनंद को खूब बढ़ाना है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, कृषिगण कह रहे हैं कि अब आप आगे हैं तो तपस्या की स्थापना हुई। इसी ढंग से आज के इस पूरे समाज में इतना आसुरी राज्य है कि कोई भी तपस्या नहीं करना चाहता, कोई वातावरण नहीं है। तो संकीर्तन आंदोलन के द्वारा प्रचार करके हम लोगों को ये समझा सकते हैं कि तपस्या, पहले हम शुरू शुरू में तपस्या का प्रचार नहीं कर सकते है ना, पहले हमें उनको हरिनाम देना होगा और फिर हरिनाम का जप करते करते उनमें शुद्धिकरण होगा, अपने आप वो तपस्या का पालन करेंगे। आजकल भक्तों को लोग समझते हैं कि हम एबनॉर्मल है ना, चाय नहीं पीते, मांसाहार नहीं करते, कोई व्यभिचार नहीं करते, नशा नहीं करते, बेचारे पागल हैं ये सब, उनको लगता है एबनॉर्मल है। और कई बार हमें भी लगता है कि हम वास्तव में एबनॉर्मल नहीं है, हमें भी लगता है कि ये बड़ी अजीब सी स्थिति है हमारी। जैसे हमारी एक बार यहाँ अपने ऑफिस में थे, कहीं मीटिंग में गए, किसी दूसरे ऑफिस से मिलने गए, तो एक सरदार जी थे उनसे मिल रहे थे, उन्होंने चाय ऑफर की, बोला मैं चाय नहीं पीता। कहता रियली चाय नहीं पीते? हाँ चाय नहीं पीता। उसने एक डायरी निकाली अपने टेबल के ड्रॉअर से, बोला प्लीज अपना नाम दोबारा से बताना, क्या नाम फोन नंबर, मैं क्या लिख रही हूँ? कहता मैं इसमें कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज का नाम लिखता हूँ जो बड़े अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं। इसने बताया ये व्यक्ति है मिस्टर, ये व्यक्ति है जितनी मर्जी ठंड हो जाए ये स्वेटर नहीं डालते, ये व्यक्ति है ये इतनी दारू पीता है, इतना करता है, ये आप चाय नहीं पीते? मैं बताऊंगा, इसके लिए चमत्कार है, चाय नहीं पीते, वातावरण ही ऐसा वहां पड़ा है ना। आज के समाज में कोई यंग व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता, आजकल तो इससे हम सिगरेट मदिरा पान, और कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके कोई मदिरा पान नहीं कर रहा हूँ पार्टीज में, पागल आउटडेटेड व्यक्ति है, बहन जी है ये पागल है क्या, काम से आ गया व्यक्ति, ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। बताया किसी मेरे माता जी का बेटा था, वो क्रिकेट अकेडमी में गया, किसी 10 साल के बच्चे ने गाली देनी आती, बोलता नहीं लल्लू कहेगा गाली देनी भी नहीं आती। ये तो कल्चर है आजकल का, तो ये कल्चर जब तक ये रहेगा हम तपस्या नहीं कर सकते। तो हमें खूब प्रचार करना है जिससे कि हम इस तपस्या करना हमारा साधारण नॉर्मल जीवन बने। प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ भक्त को चिट्ठी में लिख रहे हैं कि बच्चों को शुरू से ही प्रशिक्षण दो तपस्वी जीवन जीने का, क्योंकि एक बारी इंद्र तृप्ति का स्तर स्थित हो गया कि इस तरह की इंद्र तृप्ति करनी है, बाद में उस स्तर को नीचे लाना बहुत मुश्किल होता है, कष्टदायक होता है। तो प्रभुपाद कहने शुरू से ही बच्चों को प्रशिक्षित दो, ऋषभ भगवान ने शुरू से ही बच्चों को प्रशिक्षण दिया। लेकिन आजकल के माता पिता क्या रहता है कि शुरू से ही बच्चा कंफर्टेबल रहे। कोई माता पिता अपने संतान को तपस्या में प्रशिक्षण देगा? किसी को जाके उपदेश देंगे बोले पागल हो गए? हमारा तो ये सपना है कि हमारा बच्चा राजकुमार की तरह पले, राजकुमार है मेरा बेटा राजकुमार, इसका मैं खूब सुख दूंगा, मेरे को नहीं मिले इसको मिले। अरे उसका आप कष्ट दे रहे हो, उसको जो सुख है वो दुख है, और जिसको आप कष्ट समझ रहे हो उसका परमानेंट निवारण है दुखों से। आप समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं? अटपटी लग रही है बात? लेकिन इस स्तर तक समझाने के लिए प्रचार करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि नहीं बोल सकते वो कहे कैसी उल्टी सीधी बात कर रहे हो, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। एंड जो भक्त लोग हैं वो तो अपने संतान को ऐसा कर सकते हैं। आप मायापुर के गुरुकुल में जाएंगे, वहां के जो बच्चे देखे हैं ये ऐसे नहीं हो झुग्गी झोपड़ी के बनाने वाले बच्चे हैं, बड़े बड़े अच्छे परिवारों से आए हैं। कितने जोड़ी कपड़े होते हैं उनके पास केशव भाई बाबू? ट्रैवलिंग में जाते हैं तो एक चादर रहते हैं, पूरे दक्षिण भारत की ट्रैवलिंग करेंगे एक बैग और एक चादर के साथ, वही धोते हैं वही सुखाते हैं वही डालते हैं, बस प्रशिक्षित हो रहे हैं शुरू से ही तपस्या में। तभी जाके तो वैराग्य आएगा, तभी जाके तो विद्या आएगी, तभी जाके साक्षात्कार होंगे, तभी जाके सर्विस एटीट्यूड बनेगा, तभी जाके कृष्ण की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है, लेकिन हमने हम जहां से भी शुरू किया कर दिया शुरू, अब जितना संभव है उतना हम करें और आगे आने पीढ़ी के लिए हम कुछ तो स्टैंडर्ड दें। पहले तो अपने आप ही हो जाता था, घर में ही बच्चा पैदा हो जाता था, एक कमरे में आती थी दाई और बच्चा पैदा हो गया और वहीं पे ही वो अच्छा खाना पीना अपने आप बहुत स्वस्थ निकलता था। अब वो फाइव स्टार हॉस्पिटल्स में जाता है, सीजेरियन ऑपरेशन होता है, फिर उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, फिर एसी कमरे में रहता है, एसी गाड़ी में आता है, फिर एसी कमरे में सोता है, कंडीशन सोल एयर कंडीशन सोल बन जाता है। सच्चाई से बहुत दूर, बस स्कूल भी एसी, सब कुछ, स्कूल जाने की बस एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, उसको थोड़ा सा गर्मी बाहर निकलना पड़े बेहोश हो जाएगा, और वैसे ही बेहोश है जब एसी में है तब भी बेहोश है, धूप में है तो वैसे ही बेहोश है। तो क्या कृष्णा कॉन्शियस होगा बताइए। और हम सोचे मेरा बच्चा है, मेरा लाडला बेटा, कितना मैं कष्ट पाता रहा डीडीसी की बस में धक्के खाए, इसको मैं एसी बस में गाड़ी में भेजूंगा ड्राइवर के साथ, ये मेरी अचीवमेंट है लाइफ की, किसको जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमाता रहूंगा, ये मेरी अचीवमेंट है। ये हमारा जीवन है अज्ञानता है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं, हम सबके साथ भी है, भक्तों के साथ भी यही है, सुख को दुख समझ रहे हैं, दुख को सुख समझ रहे हैं, तो सारा का सारा भ्रम दूर होगा अगर हम तपस्या के सिद्धांत को समझेंगे क्या है ये, और फिर इसको अपने जीवन में अनुकूल करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है इसको हम ले सकते हैं। इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करना, रीडायरेक्ट करना है, बेस्ट है कि एंगेजमेंट बिजी रखें, खाली दिमाग शैतान का काम, इच्छाएं तो आती रहेंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ ये करना है वो करना है, बिजी रहेंगे इतनी सेवाएं वो भी जिम्मेवारी के साथ, ये नहीं कि मन हुआ तो कर लिया, मन नहीं हुआ तो नहीं किया, मुझे क्या है, भक्त हैं। आध्यात्मिक जीवन क्या मतलब, जो मन में आए करो, कोई कंपनी थोड़ी है, कोई निकालने वाला थोड़ी है, मेरे कोई सेवा मिलेगी गेट पे थोड़ी लगा देंगे इससे सेवा नहीं, इसको अंदर मत घुसने देना, आऊंगा फिर भी नाचूंगा प्रसाद पाऊंगा आराम से रहूंगा, जिम्मेवारी के साथ जब सेवा लेंगे तो सारी उल्टी सीधी इच्छाएं भाग जाएंगी, प्रेशर होगा भैया तो जो उल्टी सीधी इच्छाएं वाली बोली वेट कर, अभी वेट कर काम में पहले सेवा करनी है, जिम्मेवारी लेना बहुत जरूरी है, छोटी सी बीमारी हो कोई दिक्कत नहीं। यस सर,
फिर भी सुनने के बाद भी जो है जो के त्यों तस से मन की हिपोक्रेसी है हमारे अंदर, क्या है इसका इलाज क्या है, मतलब नहीं मतलब तिहाइयां निकल गई सुनते सुनते की है और अब तो डर भी नहीं लगता, चाहे जो मर्जी आ रहे हैं जो मर्जी कर्तव्य कर ले जितना मर्जी डरा ले, वो जो सहनीयत बन गई है जो मेंटेलिटी बन गई है, क्या है हिपोक्रेसी की मतलब
है। बड़ा अच्छा प्रश्न है और प्रैक्टिकल प्रश्न है, हम सबके हृदय की यही स्थिति है, कठोर हो गया हृदय, कुछ भी दो वापस आ जाए टर्न करके कठोर हार्ड हार्टेड है ना, और ये हमारी स्थिति है, लेकिन नेवर गिव अप, इसका उपाय यही है बार बार श्रवण करना, बार-बार श्रवण करना सही चेतना के साथ झुका के विनीत होकर, बात अंदर घुस नहीं रही है, हृदय में बात घुस नहीं रही है, हमारा अहंकार इतना बड़ा हुआ है कि मैं सब जानता हूं, बात घुस नहीं रही अंदर। तो शुरू शुरू में हम आए थे खुले हृदय के साथ आए थे, बताइए प्रभु जी बताइए क्या करना है, आहा मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वो हो अच्छा मनुष्य और पशु में ये अंतर होता है, वाह 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 वाह, अच्छा चार काल आहार इंद्र बहम है, तो मन कभी सोचा ही नहीं, हर चीज इतनी नई इतनी सुंदर लगते थे, तुरंत उसको स्वीकार करते थे। अब सब सुन लिया सुना दिया, खतरनाक स्थिति होती है जब सुनाना शुरू कर देता है व्यक्ति, अब सुनाना भी शुरू कर दिया, अब तो चीज अंदर कोई प्रवेश ही नहीं करती, हियरिंग स्विच ऑफ, ये हो गया हियरिंग स्विच ऑफ हुआ पड़ा है, बहुत खतरनाक स्थिति है, पतन की शुरुआत। जब हियरिंग स्विच ऑफ हो गया नो इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकती। हमें अपनी स्थिति को समझना है तो ये हियरिंग स्विच ऑन करने के लिए खूब प्रार्थनाएं, खूब सेवाएं, मिनियल विनीत सेवाएं करनी है, अपनी स्थिति को समझे, हियरिंग स्विच ऑफ ना होने देकर, ये तो ये बहुत खतरनाक है हमारे, और अक्सर हो जाता है, बोलना शुरू करते हैं तो हियरिंग स्विच ऑफ कर देते हैं, ऑन रखें। दिस इज माई एनालिसिस ऑफ माई सेल्फ, व्हाट यू से मनशोधन प्रभु। थैंक यू एनी, हाँ माता जी से अंजे अच्छा
तो
प्रश्न,
इसके लिए हमें इसको जज करना बहुत जरूरी है।
तो अपनी कैपेसिटी को समझना कि हम शुरू से बोलेंगे हम निजला हो जाएंगे, हम ये कर लेंगे, नकल मार लेंगे,
मतलब इसको प्रैक्टिकल लेवल पे करना ज्यादा जरूरी है।
करेक्ट करेक्ट, तो इसके लिए निरीक्षण में सुपरविजन में करना बहुत जरूरी है, अपने मेंटर से पूछ कर और उनसे पूरे खुले हृदय से बात करके कि मेरी ये फिजिकल कंडीशन है, ये मेंटल कंडीशन है, मेरे लिए क्या उपयुक्त है, और धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए, एकदम एकदम रैंडमली नहीं कर देना चाहिए, निरीक्षण नहीं होना चाहिए। चलो अंतिम प्रश्न अमृत को, सही बात, जिम्मेवारी लेना ही सबसे बड़ी तपस्या है, विशेषकर हमारी ऐसी संस्था में जो कि कंप्लीट रूप से वॉलंटरी है। किसी कंपनी में जिम्मेवारी लेना तो आपको पोस्ट मिलती है, पावर मिलती है, हायर एंड फायर आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यहां पे हर वक्त अपनी इच्छा से चल रहा है, वहां पे जिम्मेवारी लेना बहुत बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है मैनेजमेंट करना। क्यों प्रभु जी बड़ा पुनः हाथ खड़ा, सबसे बड़ी तपस्या है, सही कह रहे हैं, थैंक यू। हाँ चलो
जैसे आपने बताया कि जो 16 माला और 4 नियम का पालन करना हमारी बेसिक नेसेसिटी है, उसको हमें करना ही करना है, लेकिन वो एक माया बन जाती है, 16 माला हो रही है, 4 नियम का पालन हो रहा है, तो मेरी माया होती है हो रहा है, इसको पालन करते हैं लेकिन इसको कैसे,
इसको तीव्रता से नहीं कर पाते हैं, केवल इतने करके संतुष्ट हैं, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक माला हम तभी करेंगे जब हमने कोई सेवा जिम्मेवारी से कर रहे हैं, अन्यथा ध्यानपूर्वक नहीं हो पाएगी माला। माला करना एक जिसे कहते हैं एपेटाइजर है, और जब तक कोई सेवा नहीं करेंगे तो भूख लगेगी नहीं, तो दोनों साथ साथ चलने चाहिए, प्रैक्टिकल सेवा और माला, केवल सेवा करेंगे माला नहीं करेंगे तो सेवा से ही चेतना से नहीं होगी, केवल माला करते रहेंगे सेवा दो सेवा दो सेवा दो, केवल मुंह की बात कर रहे कर कुछ नहीं रहे तो माला कोई नहीं। यस मैम,
हरे कृष्ण, आपके वचन द्वारा तपस्या को बहुत बढ़िया ढंग से हमने समझाए हैं, तपस्या को नई बात नहीं है, ब्रह्मा जी से जो आदि सृष्टि का संसार की सृष्टि करना वहां से शुरू हुआ, ब्रह्मा जी भी तप किए हैं, शिव जी तप किए हैं, करते हैं अभी भी, भगवान स्वयं तप करते हैं,
सही बात,
तो तपस्या तो सारे जीव चाहे जीव हो भौतिक संसार के आधार पर सभी तपस्या करते हैं, बिना तपस्या के फल तो प्राप्त हो ही नहीं सकता, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक, तपस्या करना ही पड़ेगा, हम यहां नहीं करें तो वहां करना पड़ेगा, बिना तप के फल मिलता नहीं, मगर आशा नहीं छोड़ना कि हमने तप किया है कुछ मिला नहीं, 25 साल हो गया, 50 साल हो गया, इतने साल देखा कि टाइम वेस्ट कर, ये आशा छोड़ दें, जब ही तभी हमारा तप की फल नष्ट हो जाती है। जैसे चैतन्य महापुर एक बार जब नवदीप जिला में थे तो उन्होंने सारे भक्तों को कुछ ना कुछ वरदान बनाया, ऐलान कर दिया सबको कुछ ना कुछ देंगे जो जिसका पति चाहे। एक भक्त आया तो उनको वो क्या जो दरवाजे में खड़े हैं चैतन्य महापुर उसको बुला नहीं रहे थे। बहुत देर से वो सोचा तो चैतन्य महापुर जब बुलाएंगे तब जरूर जाएंगे आश लेकर बैठे सब देखा। कई भक्तों ने बोला प्रभु खड़े रहे तो नहीं उसको मत बुला उसको जरूरत नहीं है उसको अभी देखे नहीं वो उसको वो लायक नहीं है अभी ये जो कृपा मेरा प्राप्त करने का लायक नहीं है। तो दुखी हो गए भक्त तो फिर भी पूछा भक्तों के द्वारा चैतन्य महापुर को संदेश भेजा भी कब तो कभी तो मिलेगा आज नहीं तो काल पक्ष में तो मिलेगा। तो भगवान ने उत्तर दिया चैतन्य महापुर सौ जन्म के बाद मिलेगा वो सुन के नाचने लगे। मतलब ये जो टेंडेंसी है हमारा हम आशा नहीं छोड़ते हमें सौ जन्म के बाद ये प्राप्त होगा ये जो हमारा इच्छा दृढ़ संकल्प है जो विश्वास है ये विश्वास जब तक जागृत नहीं होता तब तक हम दृढ़ संकल्प से भगवान के नाम नहीं ले सकते।
बहुत अच्छा धन्यवाद भाई बहुत अच्छा आपका पॉइंट है तपस्या के साथ धैर्य बहुत अवश्य है।
एक दिन वो हमारे प्रभु जी बोल रहे थे जी बेहोश आदमी को कैसे जगह पैदा भी बेहोश थे से में मदिरा में बहुत चीजों में जो हनी तरन प्रभु उसको हरे कृष्ण बोलो बोला हो चुके उसके होश उड़ गए उसको मारने दौड़े कलयुग के बेहोश को दूर करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र ही एक मंत्र
है
और कुछ है
नहीं। नाइस
इसमें विश्वास और सेवा में लगन रहेगा तो समय के अनुसार फल अवश्य ही मिलेगा और वहां तक पहुंच जाएंगे। ये विश्वास प्रभुपाद ने हमें दिलाया हमारे गुरु महाराज ने हमें दिलाते रहते हैं और हम इन लोगों की जीवन चर्चा में देख भी रहे हैं बड़े बड़े महापुरुषों की गोस्वामी की जो लीला हम लोग सुनते हैं उनसे हमें प्राप्त होता है कि कैसे ये लोग प्राप्त किया आसानी से नहीं किया। सनातन गोस्वामी लोक गोस्वामी जी गोस्वामी ये आसानी से प्राप्त नहीं किया इनके पास सब भौतिक चीजों की उपलब्धता थी ये सब भौतिक वस्तु इतना परिमाण में था इनको त्याग करके बैरागी जीवन धारण कर लिया और कष्ट कष्ट भोगने लगे पेड़ के नीचे रहने लगे खाने के नहीं पहनने के नहीं एक ही कपड़ा आधा फाड़ के पहने आधा हो गए। ऐसा जीवन हम सोचते हैं तो हमारा तपस्या कहाँ रहता है हम कर पाते कभी हम तो काम चाहते नहीं है कैसे होगा। तो जब इस तरह की स्थिति हम अनुभव नहीं कर पाएंगे ऐसा पहुंच नहीं पाएंगे तो फल को आसानी से प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जीवन ही जब हम पढ़ते हैं उस ज्ञान करते हैं धीरे धीरे हमारे अंदर में ये ज्ञान की संचार होता है। तपस्या करने का जो असली मार्ग है असली तपस्या करने की जो स्थिति है वो उस प्रकार है जैसे गोस्वामी लोग के हैं जैसे हमारे पटवन आचार्य लोग कर रहे हैं हम अभी देख रहे हैं कि मायापुर के रात्रि राधा गोविंद गोस्वामी महाराज शरीर से कैसे स्थिति है जयप्रकाश महाराज इनके शरीर कैसा है तो क्या कर रहे हैं लोग चुपचाप बैठे हैं हम तरह का चिंता तपस्या कर रहे हैं चल नहीं पा रहे बोल नहीं पा रहे फिर भी रुक नहीं रहा है इतना कठिन तपस्या है। ये सब जब देख करके हम नहीं समझ पाते हैं तो हम तपस्या कहां कर रहे हैं तपस्या कर नहीं रहे सिर्फ सोच ही रहे अभी तक। जब ऐसा तपस्या करेंगे हमें भी ऐसा आनंद मिलेगा जैसे इसको मिल रहा है इसको लगन मिल रहा है। ये शरीर को शरीर नहीं समझते शरीर में तब तकलीफ है हमें दिखाई पड़ रहा है तो उसको महसूस नहीं हो रहा वो चल नहीं पा रहे फिर भी बोलने के लिए आतुर है कृष्ण का नाम सुनने के लिए आतुर है तो हम समर्थ है पर हमें रुचि नहीं है तीन दवाई है।
थैंक यू के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के आनंद कोटि वैष्णव के गौर के बारे में किसी प्रश्न है तो फिर व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं।